धौला पुस्तक ग्यारहवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वर्चायाणम्। नमो लोए सौवसाहूणम्। कम्मठजनियवेण वहि समुत्तिन्नये जिनेनमिउं वेयण महाहि आरम् विविह हि आरम् परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है इसका नाम है वेदना खंड और उसमें अपना विषय है वेदना क्षेत्र विधान अनियोग द्वार। हेलो 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 हेलो। ग्यारहवीं पुस्तक के अभी हम पृष्ठ संख्या 71 पर हम गए 71। कल हम वो संदृष्टि का अर्थ देख रहे थे तो वो नीचे से दूसरी लाइन वहां से फिर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अपने को वो फिगर देखनी है ऊपर प्राकृत में लिखी हुई। तो ये उपरिम 16 अवगहनाएं, उपरिम यानी ऊपर की लाइन के ऊपर जो पता है वो सारी। लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है वो डार्क, वहां के आगे जो है वह 5 बार एक एक बिंदी दी है, 1 2 3 4 5। जो पहले कोठे में हमने 5 देखे थे वो है, और आगे जो ट्रायंगल है 6 7 8 9 10 11 और 12, और आगे जो एक के ऊपर एक बिंदी है 13वा वो है द्विंद्रिय, 14वा है तीन्द्रिय, 15वा है चतुरिंद्रिय, 16वा है पंचेंद्रिय। अब जो पहला ट्रायंगल है वो बादर वायु का एक लब्ध्य, बादर वायु का एक पर्याप्त की जगन्य है ना? नहीं, पहले तीन है वो सॉरी अपर्याप्त के ही सारे जगन्य है। सभी जो 16 के 16 है वो अपर्याप्तों के जगन्य है। पहले 5 है वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त का जगन्य, और 611 तक ये दूसरे कोठे वाले जो बातें थी जिसको हमने जीवकांड में दूसरे कोठे में देखा था, बादर वायु का एक नीवा ते, बादर तेज का एक अप्रूफ, फिर उसमें हमने देखा ना बादर वायु का एक, फिर बादर तेज का एक, फिर बादर नीवा ते अप्रूफ अप का एक यानी जल का एक पृथ्वी का एक, फिर निगोद बादर निगोद लब्धि अपर्याप्त, और 11वें पर प्रतिष्ठित प्रत्येक लिया था। ये दूसरे कोठे के हैं। उसके बाद तीसरे कोठे के अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये भी लब्धि अपर्याप्त के जगन्य, ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेन्द्रिय के लब्धि अपर्याप्त के जगन्य, ये सब 1 से 16 तक। अब ये नीचे पढ़ेंगे। ये उपरिम 16 अवगहनाएं, त्रिसमयवर्ती आहारक, त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ लब्धि अपर्याप्त जीवों की जघन्य ग्रहण करना चाहिए, आदि से लेकर 17 अवगाहनों को प्रदेश अधिक्रम से निरंतर बढ़ाना चाहिए। यानी वो जघन्य से शुरू करते हैं तो वहां आगे आगे उसके एक 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 प्रदेश से बढ़ती हुई सारी अवगाहनाएं उसमें पाए जाएंगे। फिर जहाँ जिसकी अवगाहना समाप्त होती है उस काल में स्थापित अवगाहना शलाकाओं में से एक रूप को कम करना चाहिए, क्योंकि अधस्तन अवगाहनों के साथ नीचे निरंतर आकर ऊपर गमन का अभाव है। क्या कहना है? जहाँ जिसकी अभी हमने सूक्ष्म निगोद लब्धियां पर्याप्त की जगन्य से शुरुआत की थी, जब अपर्याप्तों की निवृत्ति अपर्याप्तों की उत्कृष्ट है, वहां तक उसके स्थान पाए जाएंगे। समझ में आती है बात? यानी एक पर शुरू हुआ लब्धि, यानी सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, और 18 पर हो गया सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का उत्कृष्ट, उसको निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट कहा, वहां लब्धि अपर्याप्त था, पर था तो अपर्याप्त अपर्याप्त, यानी एक से लेकर 18 तक, यानी उसके वो 17 हो जाते हैं, यानी 18वें स्थान पर निगोद के अपने 17 स्थान होते हैं। तो एक से लेकर 18 जो स्थान है वहां तक जो 17 स्थान है, तो ये है निगोदों की एक एक समय से बढ़ती हुई अवगाहनाओं के भेद। समझ में आती बात? निगोद कहाँ, यानी निगोद अपर्याप्तों की अवगाहना कहाँ से कहाँ तक है लब्धि अपर्याप्त की? एक से लेकर 18 तक। अब बादर कौन सा 17 वाला जीरो? 17 नंबर नीचे है लाइन। अच्छा अच्छा, आपने जीरो ऐड किया, हमारे में है वो, बाद में हमने दो जीरो ऐड किए थे एक्चुअली, 44 और 47 हमने बाद में ऐड किए थे। यानी एक जीरो कम था वो हमने बाद में 47 वाला बनाया, आपने पहले 17 में बढ़ाया, एक ही बात है। एक जीरो कम था लाइन के नीचे, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। एक देखो, जो मत्स्य रचना की थी आपको याद होगा जीव कांड में, तो सूक्ष्म निगोद के वो 17 दुनिया एक एक के लिए दो दो बिंदिया बनाई थी, तो 17 34 बिंदिया बनाई थी उसकी अवगाहना के, यानी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तों की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, यही यहाँ कहना चाहते हैं। फिर जहां जहां जघन्य अवगाहना पड़ती है वहां वहां पूर्व स्थापित शलाकाओं में एक रूप को मिलाना चाहिए, यानी निगोद की अवगाहना 1 से 18 तक, और निवा वायुकाय की दूसरे से लेकर आगे हमने देखा है ना अपर्याप्तों के उत्कृष्ट 21 तक, यानी उसमें दो दो बढ़ते हैं, क्योंकि 18 19 और 20 ये सभी उसमें निगोदों के थे, विशेष अधिक विशेष अधिक, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, उसमें दो दो मिलाना चाहिए, क्योंकि अधस्तन अवगाहना के विकल्प रूप शलाकाओं में इसकी शलाका नहीं है शेष जानकर कहना चाहिए। यानी वायु का एक का दूसरे नंबर से शुरू होता है। देखो, हम संदृष्टि देख रहे थे, पेज नंबर 71 पर शुरुआत की थी, ऊपर के लाइन के ऊपर जो थे हमने 1 से 16 उसको नंबरिंग किया था कल, तभी निगोद अपर्याप्तों की अवगाहना कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 18 तक, यानी उसके 17 स्थान हो गए, ऐसा कहेंगे, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सारे। वो 17 कहाँ लिखा, तो हम देखें नीचे के लाइन के नीचे के 17 है, वो अभी पढ़ेंगे अब आगे, तो वो ख्याल में आ जाएगी बात। हाँ देखो, अभी आगे पढ़ते हैं। ये उपरीम 11 उत्कृष्ट ष्ठ हुआ, उत्कृष्ट अवगाहनाएं निवृत्ति अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट है। ये किसके होती है, उसका स्वामी क्या है? निवृत्ति अपर्याप्त तो पूरी बड़ी दशा है, पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति के एक समय पूर्व तक सारे निवृत्ति अपर्याप्त ही कहलाएंगे, तो उसमें उसकी उत्कृष्ट अवगाहना कब होती है? तो जो जीव अनंतर काल में पर्याप्त होने वाला है उसके ये अवगाहने होती है। तो फिर प्रश्न है कि लब्धि अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना को क्यों नहीं ग्रहण किया? नहीं, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिकता के बिना असंख्यात गुणी पाई जाती है। उसमें असंख्यात गुणा का डिफरेंस है, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट में असंख्यात गुणा का डिफरेंस होता है। अब यहाँ हम ये निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट बताए ना, देखो केवल अपर्याप्त सोचो, अपर्याप्तों में जघन्य किसके है? लब्धि अपर्याप्त के। अपर्याप्तों में उत्कृष्ट किसके है? निवृत्ति अपर्याप्त। इस तरह से सोचेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अब क्या कहा, ये ऊपर के 11 बताए ना, 11 उत्कृष्ट अवगाहनाएं हैं। ये कौन से 11 ली? उत्कृष्ट में लेना है तो निवृत्ति अपर्याप्तों की उत्कृष्ट है ये। तो निवृत्ति अपर्याप्तों में उत्कृष्ट हमने देखा था, निवृत्ति अपर्याप्तों में उत्कृष्ट, पर्याप्तों की जगह नहीं, ये पर्याप्तों की जगह नहीं, 4 नंबर के कोठे में पर्याप्तों की जगह नहीं आए थे ना, और अपर्याप्तों की उत्कृष्ट, निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट 5 नंबर के कोठे में थे। हाँ, तो उन्हें ये 16 के बाद हमने 17 नंबर दिया था, और 18वां नंबर जो था वो निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट थी। ये जो 11 स्थान जो है, जो 4थे कोठे में थे, वो कहाँ पर लिखे? लाइन के ऊपर, देखो नीचे के लाइन के ऊपर। यह शुरुआत में 5 बिंदियां हैं। अभी आपके पास वो चार्ट समन्वय रखेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा।
है।
तो ये 18वां स्थान है, वो पहली बिंदी है।
अच्छा।
वो क्या होगा, जैसे पहले हमने ऊपर 1 2 3 4 5 लिखे थे ना,
18 19
वहां नहीं डालना है।
अच्छा।
क्योंकि 18 के बाद 19 20 जो स्थान हो गए वो तो विशेष अधिक के हो गए। हाँ, ऊपर 18 ले लो, देखो पहले ऊपर 18 ले, फिर ऊपर ही 19 20 छोड़ दो, ऊपर ही 21 लेना। अपर्याप्तों के उत्कृष्ट है, नंबर 5 नंबर के कोठे के है सब। फिर 22 23 छोड़ना, 24 25 26 छोड़ना, 27 28 29 छोड़ना, फिर 30। देखो अभी आसान, और मैं आसान बताती हूँ। ऊपर के लाइन में जो स्टार्टिंग में बिंदी और ऊपर 7 ट्रायंगल थे, उसमें से 7 में से तो 6 ट्रायंगल ही दूसरे कोठे में से थे, और पहले 5 बिंदी तो पहले कोठे में थे। अब नीचे के लाइन के ऊपर वही जीव लेना है, यानी निगोद वायु का एक वगैरह वगैरह, अभी उनकी अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहन है सबकी, पर उसका नंबरिंग अलग था। पहले 5 बिंदियों को नंबर, अभी हमने क्या देखा, 18 21 24 27 और 30। नहीं, नीचे लेफ्ट साइड के।
हाँ,
लाइन के ऊपर के 5 है वो सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्तम की उत्कृष्ट है। हाँ, वो अभी दी। उसके आगे का ट्रायंगल, उसके आगे जो 6 ट्रायंगल है वो कोठा नंबर कौन सा होगा? नहीं, 4 5 6 के बाद 7 8वां नंबर का होगा। तो ये बादर वायु का एक निवृत्ति अपर्याप्तम की उत्कृष्ट होगी। उसको नंबर वो 33 होगा, 36 होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ, बाद में कैसे निकाला वो बताऊंगी। 33 36 फिर 39। पहला त्रिकोण बादर वायु का एक निवृत्ति अपर्याप्त का उत्कृष्ट 33, दूसरा ट्रायंगल 36 नीचे के लाइन के ऊपर, तीसरा ट्रायंगल है 39 बादर जल का एक, 42 बादर वायु का एक, पृथ्वी का एक है, पृथ्वी का एक हुआ, फिर 45 बादर निगोद प्रतिष्ठित, जिसको हम प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, नहीं नहीं बादर निगोद केवल निगोद है, केवल निगोद है, और बाद 48 नंबर डालना वो प्रतिष्ठित प्रत्येक है। यहां तक समझ में आई बात? अब कहते हैं उनके साथ साथ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। अब यहाँ पेज नंबर 72 पर पढ़ते हैं, नीचे से तीन छठी लाइन, सूक्ष्म निगोद से लेकर अधस्तन 11 जघन्य अवगाहनाएं, निवृत्ति परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों की ग्रहण करना चाहिए, यानी पर्याप्तों की जघन्य परंपरा पर्याप्ति से पूर्ण नहीं हो तो हमने नहीं, हम कहीं पर्याप्तों की जो जघन्य कहते हैं, नंबर चार कोठे में, कोठा नंबर चार में ये अवगाहनाएं थी। ये अवगाहनाएं कहां पर होती है उसके में बाद में देखेंगे, पहले ये कहां उसको नंबरिंग करेंगे, ऊपर 16 के बाद, पहले तीन कोठे 16 तक समाप्त हुए थे और चौथे कोठे में पहला नंबर 17 का आया था, वो नीचे का लेफ्ट साइड का जो बिंदी है उसको 17 नंबर दे दो, छोटी छोटी है ना वो, जैसे लाइन करके एक नीचे एक ऊपर नंबरिंग करना है, लाइन से बताना उसको, तो पहला 0 होगा वो 17 का, नहीं फिर 18 तो ऊपर चला गया, और 19 जो है वो नीचे के उल्टे ट्रायंगल है ना, उसका पहला ट्रायंगल उसको 19 नंबर देना है। ये सारी पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहने हैं, यानी ये कैसा हुआ, नीचे पर्याप्तों की जघन्य 17 नंबर पर, ऊपर अपर्याप्तों की उत्कृष्ट हो गया, और फिर 19 वाला है वो सूक्ष्म के पर्याप्तों की उत्कृष्ट हो गए। अब 17 के बाद 20 नंबर देना, दूसरा 0 है वो 20 है, ये निवृत्ति पर्याप्तों की जघन्य हो गई, 21 नंबर हमने ऊपर दिया था, अपर्याप्तों का उत्कृष्ट दिया था, निवृत्ति अपर्याप्तों का, और 22 नंबर वो दूसरा नीचे का उल्टा ट्रायंगल है 19 के बाद वाला ट्रायंगल, उसको 22 नंबर देना, वो ट्रायंगल डार्क ट्रायंगल 22 लिखा। अब 23 नंबर तीसरे 0 को देना लाइन के नीचे, 24 वाला ऊपर का 0 हमने नंबरिंग किया था, और 25 वाला तीसरा ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल लाइन के नीचे वाला, फिर 26 चौथे 0 को लेना नीचे के, 23 के बाद है वहां 26 होगा, 27 ऊपर चला जाता है, और 28 और 25 के बाद वाला ट्रायंगल उसको 28 देना, फिर 29 है वो लाइन के नीचे का पांचवी बिंदी, 30 तो ऊपर चला गया, और 31 यहां पर पांचवा ट्रायंगल उल्टा, ये पांचों ही क्या है, निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट हो गए, पांच ये पांच नीचे के इन्वर्टेड ट्रायंगल है निवृत्ति पर्याप्तों के उत्कृष्ट हो गए। अब उसके बाद 31 के बाद 32 नंबर है वो छठे 0 को देना नीचे, 33 तो ऊपर हमने बादर वायु का एक को दिया था, ऊपर का सीधा ट्रायंगल है उसको 33 नंबर दिया था, अब 34 नीचे आ जाएगा उल्टा ट्रायंगल, फिर 35 है आगे वाला 0 को देना 32 के बाद वाले, 31 के बाद का उल्टा ट्रायंगल वो 34 है, वो वायु का एक का है, ये सारे बादर वायु का एक के पर्याप्तों के उत्कृष्ट हो गए। तो 34 वहां दिया, 35 वो यहाँ 0 में दिया, 36 तो ऊपर का सीधा दूसरा ट्रायंगल है, फिर नीचे वायु वायु का एक 34 के आगे वाला तेज का एक 37 नंबर है, बादर तेज का एक पर्याप्तों की वहां उत्कृष्ट अवगाहना है। 37 के बाद 38 वो जीरो में देना, 39 ऊपर का ट्रायंगल तीसरा, 40 नीचे का हाँ ट्रायंगल वो जल का एक का है, फिर 41 नंबर वहां स्टार्टिंग में जो जीरो थे नीचे लाइन के नीचे हाँ उसमें देना, फिर 42 नंबर ऊपर का चौथा ट्रायंगल सीधा ट्रायंगल बादर का एक बादर पृथ्वी का एक का था वो 42 हुआ। अभी नीचे आना 40 के बाद वाला ट्रायंगल है वहां 43 नंबर देना, वो बादर पृथ्वी का एक का है, फिर 44 नंबर वो जीरो को देना लास्ट जीरो वहां छपा हुआ लास्ट जीरो, उसके बाद ऊपर वाला ट्रायंगल 45 42 के बाद वाला 45 बादर निगोद वाला है वो अपर्याप्तों का उत्कृष्ट, 45 के बाद नीचे आना 46 वो 46 नंबर निगोद का है बादर निगोद का है बादर निगोद का उत्कृष्ट है, उसके बाद ये 47 नंबर का एक जीरो ऐड करना है फिगर में। अभी आपने जहां 44 डाला था ना उसके ऊपर की बाजू एक जीरो डाल के वहां 47 नंबर डाल दो, लाइन के नीचे ही लिखो 47 उसको 47 नंबर डालो। अब 48 ऊपर वाला ट्रायंगल छठा ट्रायंगल प्रतिष्ठित प्रत्येक का होगा वो 48। अभी नीचे आना तो निगोद वाला 46 नंबर था उसके बाद 49 नंबर डालना, वही वो प्रतिष्ठित प्रत्येक की उत्कृष्ट अवगाहना हो जाएगी वो। अब 49 के बाद उसके आगे का ही ट्रायंगल लेना बड़ा वाला नीचे का नीचे के बड़ा वाला लिया ना अप्रतिष्ठित प्रत्येक का जघन्य है वो 50 नंबर पर, यानी उससे वो असंख्यात गुणा है तो जरा बड़ा कर दिया उन्होंने, ये 50 हो गए ना अभी, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का जघन्य था, यानी ये 50वां नंबर है वो कोठा नंबर 10 है। अभी उसके बाद 51 वगैरह जो है ना 51-52 वो कहाँ लिखे हैं हमने 51 वगैरह कहाँ है, हाँ 51 वो आगे पर्याप्तों के जघन्य, देखो 50 नंबर के बाद आगे जो लाइन करके उसके ऊपर करना है या ये लाइन के बाद वो ट्रायंगल है ना बड़ा ट्रायंगल वो मोर निकाला है उसके ऊपर का जो ट्रायंगल है उसके लेफ्ट में पन लाइन के नीचे एक के ऊपर एक दो बिंदी है तीन बिंदी है चार बिंदी है पांच बिंदी है वो पहले पर्याप्तों के जघन्य है वो, तो पहले दो बिंदी है वो 51 नंबर है, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे डालना है या वहां से लाइन करके बाहर की ओर डालना ये सारे पर्याप्तों के जघन्य है। 50 नंबर भी अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त का जघन्य था, हाँ वहां जो तीन इंद्रिय वाला वो 52 वाला है, चतुरिंद्रिय वो 53 है, 51 वो नीचे 51 दो इंद्रिय वाले दो बिंदी है ना नीचे की नहीं वहां पर भी दो करना है, देखो 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 नहीं साइड में एकदम वो उनकी जो कुछ मिस्टेक है क्योंकि जगह भी देखो मैं अभी यहाँ बताती हूँ, ये नीचे का 50 नंबर हो गया, अभी इसकी लाइन तो ऐसी थी और ये ऊपर की लाइन इस तरह से यहाँ जाके ट्रायंगल होती है। अब नीचे ही उन्होंने, अभी नीचे ही ऐसा करना है आपको, ये 50 नंबर है। अब आगे बिंदी है मगर उसमें ऐसी लाइन होनी चाहिए था नीचे ही। आप ड्रॉ करना पेंसिल से, यहाँ ऊपर 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी 5 बिंदी ऐसा है। तो ये है, ये 51 है, 50 के बाद नीचे, 50 के बाद 3 4 और 2 है उसको छोड़ो। देखो यहाँ नीचे ये 3 0 4 0 2 0 फिर उल्टा ट्रायंगल, फिर 5 0 1 2 3 4 5। देखो अभी ये है, यहाँ एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ये दो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लाइन के नीचे दो जगह 0 0 है।
नीचे एक ट्रायंगल है उसके बाजू में।
हाँ, तो नीचे जो ट्रायंगल है ना,
हाँ,
उसके ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ करो। ये उनको ये ऐसी ड्रॉ करनी, और वो 5 बिंदी के नीचे तक ऐसी वो लाइन आनी चाहिए। देखो यहाँ जो फिगर बताई है उसमें कैसे है, ऊपर के जो 5 बिंदी है ना ऐसे नीचे तक आई, 1 2 3 4 5।
हाँ।
तो उसके लिए ऐसे जरा लाइन कर दो।
हाँ।
समझ में आई बात? हाँ, लाइन को टच करते हुए जो नीचे राइट साइड में है वो 3 है। कहाँ पर?
नीचे भी 2 0 है और ऊपर भी।
हाँ, तो नीचे का वो 0 और ऊपर के 0 के अंदर ये ऐसी लाइन ड्रॉ करना, यही तो मैं कह रही हूँ। अभी हमको ऊपर के 0 से मतलब है, ऊपर जो अभी हमने हमने लाइन जो ड्रॉ की ना अभी,
हाँ।
यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ना वहां से लेकर यहाँ तक ऐसे हमने वो लाइन अपने ओर से ड्रॉ की। अब वो लाइन के ऊपर वन जो 2 बिंदी है वो 51 है। ख्याल में आई बात? 3 बिंदी है वो 52 है, यानी ये 51, ये 52, 53, 54। यानी 50 51 52 53 54 तक ये सब पर्याप्तों के जघन्य है, और ये सारे कोठा नंबर 10 वाले हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे अभी, क्योंकि 55 जो नंबर डालना है ना अभी इसके ऊपर, अभी जो हमने देखा था नीचे जहां 50 नंबर डाला था, देखो उसके आगे वो लाइन खत्म होती तो ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन है, और वहां पहले 3 बिंदी है, फिर 4 बिंदी है, फिर 2 बिंदी है, और फिर उल्टा एक ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल है। हाँ, 3 को 55, 4 को 56, 2 को 57, और वो बादर वनस्पति का एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक 58। और उसके आगे जाके ये 5 0, इसके ये ट्रायंगल के पास 5 0, 1 2 3 4 5, वो 59 नंबर है, बहुत आगे जाके है वो। 58 और 59 में बड़ा अंतर रखा है। हाँ, 59 हो गया पहले, अभी अभी नंबरिंग कर देते हैं। अब जो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी ना, उसके नीचे 3 बिंदी है, वो है 60, 3 द्विरेक की अवगाहना, ये सब पर्याप्तों की उत्कृष्ट है। फिर चतुर इंद्रिय की 61, फिर द्विंद्रीय की 62, फिर जो उल्टा ट्रायंगल है मादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर 63, और लास्ट में जो यहाँ पांच बिंदी है वो 64 अंतिम, वो पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना जो हम महामत्स्य को लेते थे। वो मोर वहाँ क्यों लगाए, वो तो ऐसे वो डिजाइन करके, क्योंकि पहले ट्रायंगल और अंतिम ट्रायंगल को कुछ मीनिंग ही नहीं है, वहां से वहां तक अवगाहना बतानी थी, बस इतना ही प्रयोजन है उसका। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने नंबरिंग कर लिया, तो वहां क्या कहना चाहते वो हमको समझ में आ जाती बात। पेज नंबर 72 पर फिरते हैं, फिर आते हैं वहां पर नीचे। अभी नीचे से छठी लाइन में फिर पढ़ती हूँ, सूक्ष्म निगोद से लेकर अधस्तन 11 जघन्य अवगाहनाएं निवृत्ति परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों की ग्रहण करना चाहिए, यानी पर्याप्तों की जघन्य। तो पर्याप्तों की जघन्य में जो हमने देखी थी, सूक्ष्म की पांच थे और आदर जहाँ वर्टिकल लाइन तक थी वो निवृत्ति अपर्याप्त। हाँ, जघन्य लेना है ना उसमें हमको, निवृत्ति परंपरा की जघन्य लाइन के नीचे वाली है, जिसको हमने 17, 20, 23, 26 वगैरह वगैरह नाम दिए थे, वो 11 बिंदी है ना, वो लाइन के नीचे की 11 बिंदी है, जिसको हमने 17, 20, 23, 36 ये नाम 26 वगैरह नाम दिए थे, वो वाले 27 तो ऊपर थे, नीचे के 17, 20, 23, 26, 29, 32 वगैरह वगैरह वो कैसे पर्याप्तों के जघन्य अवगाहना है। तो ये अवगाहना कहाँ पर होती है पूछा, इस शंका के उत्तर में कहते हैं, जो पर्याप्त होने के प्रथम समय में वर्तमान है तथा जघन्य उपपाद योग और जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग से आकर जघन्य परिणाम योग व जघन्य अवगाहना में रहने वाला है, उसके वे 11 ही अवगाहनाएं होती है। पर्याप्त होने के समय में ने शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय में, क्योंकि छह पर्याप्ति की बात नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही कौन सी
अंतिम समय जो समय पर्याप्त होने
वो बाद में बताएंगे ऊपर। हाँ, यानी हाँ अभी जो लेके वो तो पर्याप्तों का जघन्य है, हाँ, और अपर्याप्तों का उत्कृष्ट जो है वो शरीर पर्याप्ति के एक समय पूर्व में कहेंगे, वो लाइन के ऊपर बताएंगे। जो जो लाइन के ऊपर है ना वो अपर्याप्तों के, ऊपर के लाइन में लब्धि अपर्याप्तों के जघन्य लिए और नीचे निवृत्ति अपर्याप्तों के उत्कृष्ट लिए। नीचे के लाइन के नीचे पर्याप्तों के जघन्य अभी शुरुआत में है, 11 बिंदिया है, फिर वो पर्याप्तों के उत्कृष्ट, सूक्ष्म के उत्कृष्ट, फिर बादर के उत्कृष्ट, फिर वो हाँ लाइन के नीचे वो पर्याप्तों की बात है। लाइन के नीचे पर्याप्त है, लाइन के ऊपर अपर्याप्त है। ऊपर के लाइन में लब्धि अपर्याप्तों का जघन्य है, नीचे के लाइन पे निवृत्ति अपर्याप्तों का उत्कृष्ट है। अभी हम देखते आगे, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही इसकी ये पर्याप्तों की जघन्य उगाना है, परंतु वो कौन सा जीव लिए ना, जो जघन्य उपपाद योग से आया है, जघन्य एकांत अनुवृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा ऐसा वाले कंडीशंस लगा लेना। अब पेज नंबर 73 पर आते हैं, निवृत्ति पर्याप्तकों की, जिसको उन्होंने निवृत्ति परंपरा पर्याप्त कहा था, निवृत्ति परम पर्याप्तकों की अधस्तन 11 उत्कृष्ट अवगाहनाएं, उत्कृष्ट अवगाहना में वर्तमान वो परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योग वाले जीव के होती है। ये अवगाहने अपने अपने जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक होती है। यहाँ नंबर डाल के रख सकते हैं आप, इन्हें कहाँ से कहाँ हमको अभी जो अभी हम है ना निवृत्ति पर, पहले तो 11 बताए बिंदी वाले, अभी निवृत्ति पर्याप्तों की 11 उत्कृष्ट अवगाहना है। नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 यानी 19, 22, 25, 28, 31 वगैरह पर्याप्तों की, यानी सूक्ष्मों की उत्कृष्ट पहले 5 है, 19, 22, 25, 28, 31 और आगे वाली है वो बांदर पर्याप्तों की उत्कृष्ट है। यानी इसके नंबर डालो आप तो अच्छा रहेगा, निवृत्ति पर्याप्तों की 11 उत्कृष्ट अवगाहना है जिसको हमने नंबरिंग किया था 19, 22, 25, 28। यही नंबर डालो तो अच्छा है ना। तो 19 आप कहा, आप संदृष्टि में मत डालना, कहाँ पर 21 के 31 के 19, 22, 25 ये 11 कौन कौन से 19, 22, 25 हाँ 28, 31 नहीं नहीं उसमें हम आप कहाँ पढ़ रहे हैं आप कहाँ, हाँ पहली लाइन में पर्याप्तों की 11 उत्कृष्ट अवगाहना है। उन देखो देखो वहाँ 19, 22, 25, 28, 31 इस सूक्ष्म के पर्याप्तों की उत्कृष्ट। अब 31 के आगे नंबर डालो 34, 37 यानी 37 31 डालो ना, फिर 34, 37 यानी 37 हाँ 34 37, 40, 43, 46, 49 हो गए ना 11।
ये जो है
ये पर्याप्तों के उत्कृष्ट, पहले 5 है ना 19, 22, 25, 28, 31 ये सूक्ष्म पर्याप्तों के उत्कृष्ट है, और 34 से लेकर 49 तक बादर पर्याप्तों के उत्कृष्ट है। उन्होंने क्या कहा, ये सब निवृत्ति पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहनाएं हैं। ये किसके होगी कि उत्कृष्ट अवगाहना में जो स्थित है और परंपरा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योग वाले जीव के होती है, और ये अवगाहनाएं अपने अपने जगन से उत्कृष्ट जो है वो विशेष अधिक होती है। हाँ उत्कृष्ट है, मादर पर्याप्तों के उत्कृष्ट है। आप कहाँ पर देख रहे हैं,
72 पेज में।
हाँ 72 पेज पर भी लिखो आप।
हाँ।
अभी हम वहाँ पर भी नंबर डाल के रखेंगे।
हाँ।
ऊपर से 7वीं लाइन की आप पूछ रहे हैं ना, ये 11 उत्कृष्ट निवृत्ति अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट, हाँ उसके लिए 18, 21 पहले शंका के ऊपर। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट है ना, वहां लिखो 18, 21, 24, 27, 30, उसके बाद 33, 36, 30 तक की है ना, वो तो सूक्ष्म की, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट। नहीं नहीं देखो, अभी 33 क्या आएगी निको, 33, 36, 39, 42, 45, 45 और 48, ये बादर अपर्याप्तों की उत्कृष्ट। हम वो निवृत्ति शब्द मत डालेंगे, वो अपर्याप्तों में उत्कृष्ट अनिवृत्ति अपर्याप्तों को ही होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे मादर।
पहले
18, 21, 24, 27, 30 ये सु उत्कृष्ट या सु अप उत्कृष्ट लिखो, सु अप उ एक लाइन करें उसमें, और बागल लिखना बा अप उ, यानी हमें अभी नक्की हो गया ना कहाँ क्या देखना है। अब उसके नीचे भी नंबरिंग करो, नीचे से छठी लाइन में, वहां पर भी लिखा था ना 11 जगन्य अवगाहना है, निवृत्ति परंपरा पर्याप्ति से वो जो है जगन्य, उसके नंबर डालो अभी 17, 20, यानी वो सब किसके है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, अभी जो 72 पेज पर नीचे से छठी लाइन ब्रैकेट में लिखा है ना 11 जगन्य अवगाहना है, हाँ उसके लिए नीचे उसके स्पेस है, वहां लिख दो 17, 20, 23, 26, 29, ये सूक्ष्म के, सूक्ष्म पर्याप्त जगन्य, सुपज, और उसी 31 यहाँ नहीं होगा, 31 तो हमने वो 73 नंबर पेज पर डाला, वो सूक्ष्म पर्याप्तों का उत्कृष्ट था, यहाँ सूक्ष्म पर्याप्तों के जघन्य है। अभी 32, 35, 38, 41, 44 और 47 बादर पर्याप्तों की जगन्य बा प ज, अब ये भी लिख ही ले लो, पेज नंबर 71 पर भी लिख लो, ये उपरिम 16 अवगाहन है, पेज नंबर 71 पर भी, वहां पर भी हम लिखेंगे जहां रिटर्न मटेरियल है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखो,
16 के लिए ना,
हाँ नीचे से दूसरी लाइन में, वो फुटनोट में एकदम नीचे लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 लिख कर सु अ ज, यानी सूक्ष्म पर्याप्त का जगन्य। वो लभ्य पर्याप्त का होता है मालूम है हमको, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बा अ ज, और उसके आगे वो भी लिखना है 12, 13, 14, 15, 16। परंतु तीसरा कोठा है इसलिए वो बादर अपर्याप्त जगन नहीं, वो आगे तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 13 से लेकर वो सब द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के है। 16 है ना, 16 तक बताए ना, 16 स्थान बताए ना, ये सारे बादर अपर्याप्त के जगह नहीं है, परंतु 13 से लेकर वो द्विंद्रिय है, उसको बादर, वो बादर ही होते हैं, और वो 12 नंबर भी बादर ही होता है, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वाला है ना, प्रतिष्ठित प्रत्येक। ये सारे 6 से लेकर 16 तक बादर अपर्याप्तों के जगह नहीं है।
हाँ,
देखो 12 जो है ना बादर है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तेरह से लेकर द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, ये सब अपर्याप्तों के जघन्य है। यानी अभी आपको ख्याल आया होगा, ऊपर के लाइन के ऊपर के सारे अपर्याप्तों के जघन्य है। नीचे के लाइन के, नीचे के लाइन के नीचे के स्टार्टिंग वाले है वो पर्याप्तों के जघन्य है, पहले वो 11 बिंदिया है वो। हाँ, अभी हम आते हैं 73 पेज पर, एक पैराग्राफ हुआ अपना, दूसरा पैराग्राफ, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से लेकर, एक नंबर से लेकर सब जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहनाएं, जब तक बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना को प्राप्त होती है, तब तक अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र रहती है। देखो मैंने कल बताया था आपको, ये कौन सी है देखो देखो, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जघन्य अवगाहना से लेकर, एक नंबर से लेकर सब जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना है, जहां जो आ गए बीच वाले नंबर। अब कहां तक पहुंचना है, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना, देखो देखो क्या क्या कहा है उसको, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव, यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक की जघन्य अवगाहना है, यानी 50 नंबर पर है वो। हमने 49 तक देखी थी वो, यहाँ 50 नंबर डाला है, यानी उन्होंने बताया है अंगुल के असंख्यात भाग मात्र रहती है। नहीं नहीं बराबर है, 50 नंबर है ये, 50 नंबर है, 1 से 50 तक सभी जो अवगाहना है अंगुल के असंख्यात भाग है, यही बताया था उन्होंने, द्विंद्रिय की पर्याप्तों की जघन्य से लेकर अंगुल का संख्यात भाग बताया था, यानी 50 तक तो अंगुल का असंख्यात भाग है। अब द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहना है, इसका नंबर है 51, हमने यही पढ़ा था परसों भी, वो 49 नंबर हमने उसके लिए डिराइव किया था, कितने बार वो उसको करना है, इसके लिए संदृष्टि बनाने के लिए जघन्य की। हाँ क्या कहते हैं, देखो पढ़ो आगे क्या नहीं, द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों की जघन्य अवगाहना है अंगुल के संख्यात्व भाग है, अभी तक अंगुल का असंख्यात भाग था, घनांगुल का, यानी हमने जो छे छे कहा था, अंगुल यानी घनांगुल। देखो देखो, आवली के लिए आठ कहते थे और घनांगुल के लिए छह, छह बटे असंख्यात, और 51 नंबर पर छह बटे संख्यात, यानी छह घनांगुल, छह का अर्थ होता है घनांगुल। आगे बढ़ो, असंख्यात छह बसे असंख्यात, वो अंगुल का असंख्यात भाग, और द्विमीय जो है वो छह बटे, हाँ छह बटे संख्यात करना, 51 नंबर संख्यात, यानी वो नीलू का हम साइन करते हो। अभी बताएंगे द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना अनुंधरी के होती है, किसको है वो तो बता। अनुंधरी नाम का जो कुछ प्राणी, यानी द्विंद्रिय जीव, वो हमेशा आते हैं ना, वो कुंथु अनुंधरी वगैरह वो शास्त्र में आता है, किसके जघन्य होती है। हाँ ऐसे ही तीन ये पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कुंथु के होती है। हाँ जगन्य में तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय चलेगा, तीन्द्रियों में कुंथु के होती है। चतुरिंद्रिय पर्याप्त की जगन्य अवगाहना कान मक्षिका के होती है। उत्कृष्ट हमने भ्रमर की देखी थी, ये कान मक्षिका को लिया। पंचेंद्रिय पर्याप्त की जगन्य अवगाहना सिक्त मत्स्य के होती है। हाँ ये सारे ही, हाँ ये संख्यात विभाग होते हैं सब, घनांगुल का संख्यात भाग ही है सब। ख्याल में आई बात? देखो 51 52 53 54 पंचेंद्रिय पर्याप्त ने 54 आया, इंद्रिय पर्याप्त ने 52 था, चतुरिंद्रिय ने 53, पंचेंद्रिय वो 6 मत्स्य ने तंदुर मत्स्य जिसको हम कहते 54 नंबर। आप ऊपर देख लो कहाँ लिखे थे हमने, वो एक हमने लाइन करके ऊपर लिखे थे 51 52 53 54 करके। अब उत्कृष्ट अवगाहना में पहला नंबर तीन्द्रिय का लेना, पेज नंबर 70 नीचे से। हाँ तीन्द्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, इसका नंबर है 55। तीन गव्युति प्रमाणे, गव्युति यानी कोष, हमने देखा था 3/4 योजन, तीन गव्युत यानी तीन कोष, इसको ही हमने तीन चतुर्थांश योजन लिखा था पहले, आपको याद होगा तो। वह किसके होती है? वह गोमी के होती है, गोम कहते ना हम। चतुरिंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना चार गव्युति प्रमाण है, चार कोष, नहीं वो तो है वो भ्रमर का होता है, हाँ वो तीन कोस वाली गोम, हाँ वहाँ द्वीप में होती है। और चतुरिंद्रिय पर्याप्त में चार गव्युत यानी चार कोस हो गए, नहीं नहीं एक योजन हो गया, वो 56 नंबर। हाँ कहाँ पर होती है? भ्रमर के होती है। कहाँ पर? अच्छा द्विंद्रिय पर्याप्त की, क्योंकि तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय फिर द्विंद्रिय, इसका नाम ये 57 नंबर पर द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाना 12 योजन प्रमाण। वो एक योजन था ना, चार कोसे ने एक योजन था। वह कहाँ पर होती है? वह शंख के होती है। एकेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाना 57 के बाद 58 एकेंद्रिय में ले लिया। संख्यात योजन प्रमाण है। ये संख्यात गुण 12 योजन भी संख्यात योजन ही है, परंतु ये तो हमने देखा था संख्यात योजन प्रमाण होती है। वो कहाँ होती है? 1000 योजन आयाम। वो एक योजन विस्तार वाले पद्म के होती है। फिर उसकी वो नाली भी होती है ना, वो तो आधे उसका पूरे डायमीटर हमने निकाले थे। हाँ, एक्चुअली उत्कृष्ट अवगाहना जो है, सॉरी कोई गड़बड़ कर दी हमने, वो 60 से है। तीन दिन की उत्कृष्ट अवगाहना 60-61 से होती है। 55 से वो तो अपर्याप्तम की उत्कृष्ट थी। वो 54 नहीं करना, वो पर्याप्तम की जगन्य थी। पर्याप्तम की जगन्य 54 तक बराबर है। जहां हमने 55 नंबर डाला है ना, उसको 60 नंबर डालो। तीन ये पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, साठ नंबर देखा ना, एक 68 पेज पर देखा ना, 67 पर, 68 पेज पर 90 नंबर का सूत्र, तीन इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। वो नंबर 60 है, हमने गलत बताया, जरा करेक्शन कर लो। चतुरिंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना 61 होगी। वो हमने 54 वगैरह देखते अपर्याप्तों के उत्कृष्ट थे। अभी द्विंद्रिय पर्याप्तकों की उत्कृष्ट 62। फिर एकेंद्रिय पर्याप्तों की उत्कृष्ट, वो वनस्पति की होती है, 63। हाँ, वो 1000 योजन आयाम और एक योजन वाला विस्तार वाला पद मैंने कमल का होता है। पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना 64। संख्यात 1000 योजन है। संख्यात 1000 योजन तो हमें 1000 योजन तो उसकी लंबाई है, पर 12.5 करोड़ घन योजन ये उसके एक्चुअली संख्यात 1000 योजन हो जाता है। वह कहाँ होती है? 500 योजन प्रमाण उच्छेद, इससे आधे विस्तार यानी 250, और 1000 योजन आयाम से युक्त मत्स्य के होती है। इनके अपर्याप्तकों की अवगाहनाएं उक्त प्रमाण के प्रतिभाग मात्र होती है, उसके संख्यात विभाग मात्र होती है। इनके अपर्याप्तों की अवगाहनाएं, हाँ, उनके अपर्याप्तों की उत्कृष्ट यानी 55, 56, 57, 58, 59 इनके अपर्याप्तों की जो लिखा है ना, हाँ वहां लिख दो, इनके अपर्याप्तों की 55, 56, 57, 58 और 59, और ये हमने 60, 61, 62, 63, 64 लिए। तो 60 के वो 60 वाला अपर्याप्त वो 55 नंबर पर आ जाएगा इस तरह से। 55 से 59 तक अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना है, सॉरी अपर्याप्तों की अवगाहना है। ये अपर्याप्तों की उत्कृष्ट है। नहीं, यहाँ तो क्षेत्र की बात हो गई, क्षेत्र विधान यहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस पुस्तक में वेदना के और भी काल विधान भी बताने वाले हैं। अब 75 पेज पर नया विषय शुरू करते हैं, काल संबंधी। वैसे तो इंटरेस्टिंग है ये विषय, वेयण काल विहाणम विधान, वेदना काल विधान, इसका नाम है वेदना काल विधान। काल ने कितने काल तक वो द्रव्य वेदना रहती है उसका चर्चा करेंगे अभी यहाँ पर। वेयण काल विहाणेति तथ इमानी तिन्नी अनुयोग दाराणी नादव्वाणी भवन्ति। वेदना काल विधान, वेदन नहीं, वेदना काल विधान, क्योंकि प्रकृति को, कर्म प्रकृति का जो द्रव्य है उसको वेदना कहते हैं। तो वेदना काल विधान अनुयोग द्वार प्रारंभ होता है, ती लिखा ना, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार जानने योग्य है। वो कौन से है वो दूसरे सूत्र में बताएंगे, पहले इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ काल 7 प्रकार का है, नाम काल, स्थापना काल, द्रव्य काल। हम हमेशा निक्षेप तो 4 ही लगाते ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अभी इसमें और भी बताए उन्होंने, नाम काल, स्थापना काल, द्रव्य काल, समाचार काल, समाचार नहीं, समाचार काल, अद्धा काल, प्रमाण काल और भाव काल। उसमें काल शब्द नाम काल कहा जाता है, काल हम किसी का नाम भी हो सकता है ना, काल, अच्छा काल भैरव, वह यह है। इस प्रकार बुद्धि से अभेद करके स्थापित द्रव्य स्थापना काल है। हमने ये चौक को कहा ये हम, ये काल है, तो ये स्थापना हुई है ना। द्रव्य काल 2 प्रकार का है, ये हमने बहुत बार बताए हैं, इसमें आगम और नो आगम 2 भेद करेंगे, आगम द्रव्य काल और नो आगम द्रव्य काल। आगम किसको कहेंगे, जानने वाला जीव, परंतु उसमें उपयोग नहीं है। तो कहते काल प्रावृत का जानकार, काल संबंधी जो आगम है हमारा उसका जानकार उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य काल है, उस जीव को ही हम आगम द्रव्य काल कहेंगे। नो आगम द्रव्य काल 3 प्रकार का है, जो जान नहीं रहा वो क्या है, उस गायक का शरीर होगा, वो जीव होगा जो भविष्य में जानेगा, और इनके अलावा अन्य जो चीज है उसको भी कहेंगे। हाँ, तो कहते कि नो आगम द्रव्यकाल 3 प्रकार का है, गायक शरीर नो आगम द्रव्यकाल, भावी नो आगम द्रव्यकाल, और गायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त, यानी इनको 2 को छोड़कर, ये नाम नहीं लिखते तो भी, केवल तद व्यतिरिक्त लिखते तो भी यही अर्थ होता है। नो आगम द्रव्य काल, इनमें गायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य काल ये दोनों सुगम है। हमने भी बहुत बार देखे थे, गायक शरीर ने जानने वाले जीव का शरीर, बोले भूतकाल का होगा या इस भव का होगा या भविष्यकालीन भव का हो सकता है, भावी में वो जीव लेना जो भविष्य में जानने वाला है। अब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य काल 2 प्रकार का है, प्रधान और अप्रधान। उनमें जो प्रदेशों की अपेक्षा लोक के बराबर है, शेष 5 द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है। प्रदेशों की अपेक्षा लोक के बराबर है, उसका अर्थ क्या है, काल द्रव्य। हाँ, शेष 5 द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है, रत्न राशि के समान प्रदेश प्रचय से रहित है, यानी रत्न राशि जैसे एक के दूसरे को चिपकी, यानी वो जुड़ी हुई नहीं है, छुट्टी छुट्टी है, तो प्रदेशों का समूह नहीं है, उसका कायत्व नहीं है, एक सिंगल सिंगल अलग अलग प्रदेश ही है। तो प्रदेश प्रचय यानी प्रदेशों का समूह, जिसको हम पंचास्तिकाय कहते हैं, इसे अमूर्त व अनादि निधन है, तो हमने मालूम है, तो सारे द्रव्य अनादि निधन होते हैं और ये अमूर्त ही द्रव्य है। यह प्रधान द्रव्य काल है, ये द्रव्य काल, इसको प्रधान कहा, दूसरा अप्रधान की बात करेंगे। तो ये काल द्रव्य का यानी उसका वर्णन करते समय ऊपर एक गाथा दी है, कालो परिणाम भवो परिणामो दौ अकाल संभूदो दौन्नम एष सहावो कालो क्षण भंगुरो नियदो। समयादि रूप व्यवहार काल चूंकि जीव पुद्गल के परिणमन से जाना जाता है, परिणाम भवो, अतः वह उससे उत्पन्न कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये जो व्यवहार काल है समय समय, तो वो जानने का तरीका क्या है, तो कि जीव और पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है उसके द्वारा हम कहते हैं इतना काल बीत गया। हम घड़ी की ओर वो तो जो कांटे का परिवर्तन देख रहे तो हम कहेंगे एक घंटा हो गया है ना, 5 मिनट हो गए। तो कहते उससे उत्पन्न हुआ ऐसा कहने में आता है, ये कथन कैसा है, व्यवहार का कथन है। और जीव और पुद्गल का परिणाम चूंकि द्रव्य काल के होने पर होता है अतः वह द्रव्य काल से उत्पन्न कहा जाता है। देखो क्या है, ये निमित्त की तरफ से कथन हो रहा है, जीव और पुद्गल के परिणमन में कौन निमित्त है, तो काल द्रव्य। तो जीव और पुद्गल का परिणाम काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहेंगे हम, व्यवहार कथन, निमित्त को हम उसका करता है कहकर एक कथन पद्धति है। तो व्यवहार काल जीव और पुद्गल के परिणमन से उत्पन्न हुआ, और जीव और पुद्गल का परिणमन निश्चय काल से उत्पन्न हुआ। ख्याल में है ना गड़बड़ी, यह उन दोनों अर्थात व्यवहार और निश्चय काल का स्वभाव है। इनमें व्यवहार काल क्षण क्षयी यानी क्षण क्षण में नाश होने वाला और निश्चय काल अविनश्वर है। देखो अभी गाथा फिर पढ़ते, कालो परिणाम भवो यानी काल वो परिणाम से उत्पन्न हुआ है, वो कौन से काल की बात है, व्यवहार काल की। और परिणामो दौव काल संभूदो, और परिणाम द्रव्य काल से उत्पन्न हुआ है, पहला काल था वो व्यवहार काल था जिसको हम समय समय कहते हैं। परिणाम भव यानी जीव और पुद्गल के परिणमन से उसको हम गिनते हैं तो उसके कारण उत्पन्न हुआ कहेंगे, और परिणाम है जो है वो द्रव्य काल के निमित्त से होता है उससे निमित्त हुआ ऐसा कहेंगे। दोन्नम एस सहावो, दोनों का यही स्वभाव है, सहावो यानी स्वभाव। कालो क्षणभंगुरो नियदो, अभी जो काल है वो क्षणभंगुर भी है और नियत भी है। क्षणभंगुर है वो व्यवहार काल है और नियदो जो है वो निश्चय काल है। इस तरह से काल का वर्णन किया, ये हमने पंचस्थ इकाय में देखी थी ये बात। ओ अच्छा, आगे पढ़ते 2 नंबर की गाथ 76 पेज। नय परिणमय संयम सो नय परिणामे अन्नमन्ने सिम विविह परिणामियाणम हवयु हेउ स्वयं कालो। वह काल न स्वयं परिणमता है, सा का ता करो, और न अन्य पदार्थ को अन्य स्वरूप से परिणमाता है, किंतु स्वयं अनेक पर्यायों में परिणत होने वाले पदार्थों के परिणमन में वह उदासीन निमित्त मात्र होता है। काल न स्वयं परिणमता है, अन्य की पर्याय रूप से स्वयं परिणमन नहीं होता, और अन्य पदार्थों को अन्य स्वरूप से परिणमाता भी नहीं है, परंतु जो स्वयं परिणमित होने वाले जो द्रव्य है, सभी द्रव्य है, तो उनमें वो उदासीन निमित्त है। लोगागा सपदे से एक एक के जेठिया हु एक एक का रेणाणम राशि इव ते कालाणु मुने औवा। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो रत्न राशि के समान एक एक स्थित है उन्हें कालाणु जानना चाहिए। और उसको कहते उसका उदाहरण दृष्टांत क्या दिया, रत्नों की राशि के समान, एक के ऊपर उसकी राश ऐसी घनाकार हो जाती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे लोकाकाश का शेप है वैसी उसकी राशि काल द्रव्यों की, वो अरूप ये कैसे दिखेगा? परंतु देखो कितना एक एक सूक्ष्म एक 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 काल द्रव्य सब जगह पर है। कालोत्तीय वयसो सभाव परुवो हवैनिचो उपन्न पथंसी अवरोधी हंतरठाई। काल यह नाम निश्चय काल के अस्तित्व को प्रकट करता है जो द्रव्य स्वरूप से नित्य है। जो काल ये नाम है तो उसको बताने वाला पदार्थ भी इस विश्व में होता है, और वो तो हमेशा रहने वाला जो द्रव्य होगा। दूसरा जो व्यवहार काल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है क्योंकि वो उसकी पर्याय है, तथापि वह समय संतान की अपेक्षा, जिसको हम प्रवाह क्रम की अपेक्षा व्यवहार ने से आवली व पल्ले आदि स्वरूप से दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। जैसे कल बात आई थी अपनी नियम सार में, सिद्ध पर्याय अनंत काल तक रहने वाली है, वो कैसी? संतान क्रम से कर प्रवाह क्रम से। अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो व्यवहार काल है, हम आवली कहेंगे, सागर कहेंगे, पल्य कहेंगे, अवसर्पिणी काल कहेंगे, उत्सर्पिणी काल कहेंगे, अन्य अन्य जो गिनने पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल कहेंगे, तो इसके अपेक्षा से वो कैसा है? दीर्घ काल तक रहने वाला है, यानी अनेक समयों के समूह को हम उसको नाम देते हैं तो उस अपेक्षा से उसको दीर्घ काल तक कहते हैं। ये सब प्रधान काल द्रव्य की बात हुई कि कौन सा भेद था द्रव्य निक्षेप का? तद व्यतिरिक्त वाला। तद व्यतिरिक्त में दो किए थे, प्रधान काल और अप्रधान काल। अब अप्रधान द्रव्य काल तीन प्रकार का है। द्रव्य काल का अर्थ क्या है? द्रव्य निक्षेप लगा रहे हम, नो आगम द्रव्य निक्षेप है ये, उसमें ज्ञायक और भावी को छोड़कर जो तद व्यतिरिक्त था उसमें एक भेद तो काल द्रव्य का लिया, और ये दूसरा अप्रधान द्रव्य काल तीन प्रकार का बता रहे हैं, सचित्त अचित्त और मिश्र। उनमें दंश काल, मशक काल इत्यादि सचित्त काल है, क्योंकि इनमें दंश व मशक के ही उपचार से काल का विधान किया गया है। धूलि काल, कर्दम काल, उष्ण काल, वर्षा काल एवं शीत काल इत्यादि सब अचित्त काल है। सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्र काल है। ये तो समझना आसान है, मूल भेद उसके सचित्त अचित्त और मिश्र किए। दंश काल यानी जो हम कहें नहीं, वो तो अभी तो शाम का समय है, अभी मच्छर आने का टाइम हो गया, ऐसा भी कहते हम, ये तो दंश यानी उसके दंश करने का टाइम आ गया, इस तरह से उसके वो काल का वर्णन करते हैं। मशक वो वही है, दंश मशक एक शब्द आता है ना शास्त्र में, दंश मशक मच्छरों का, वो मशक यानी मच्छर होगा, यानी जो जीवन संबंधी जो काल है वो सचित्त काल कहेंगे। ऐसा भी हम कहते ना, वो कोई जीवों के जो कुछ काल होगी उसमें तो उसको वो सब आएगा उसमें। ये धूलि काल वगैरह समझते ना, हाँ शाम के समय कहेंगे धूलि काल है, धूलि काल, कर्दम काल, उष्ण काल, ये तो समझ में आए हुए ऐसी बात है, और दोनों का मिश्र कथन होगा तो कहते हैं वो मिश्र काल। सामाचार, सम प्लस आचार, सामाचार। दंश काल उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो काटने के काल होता है मच्छर काटते हैं ना उसका, उसकी बात होगी। दंश मशक एक शब्द आता है शास्त्र में, ये समाचार ही, समाचार नहीं किया उन्होंने, समाचार ही शब्द लिखा है, हमने समाचार लिखे ना, समाचार समाचार, हमने कहा निकाल, हमने कहा कि रक्षण किया था, समाचार, हाँ समाचार, हम समाज बराबर रखेंगे समाचार। समाचार एक्चुअली समाचार भी कह सकते, क्योंकि जैसे संयम कहते हैं ना वैसे समाचार, पर वो अलग से नहीं लिख सकते इसलिए समाचार कर दिया। ठीक है, वो दो प्रकार के बताए, लौकिक और लोकोत्तरीय। उनमें यानी वो सम्यक आचार के काल बताए, वंदना काल, नियम काल, स्वाध्याय काल व ध्यान काल इत्यादि लोकोत्तरीय समाचार काल है। समाचार ही लिखा है सब जगह, ये आचार संबंधी काल है। कर्षण काल, लुनन काल, वपन काल इत्यादि लौकिक समाचार काल है। हम कहते हैं वो खेती के अभी वो पेरने का समय है, काटने का समय है, अभी धान उग गया है, अभी वो उसका उसी फसल काटने का समय आ गया, वो सारे काल लौकिक है। हाँ वो सब कुछ भी कैसे, आतापन काल, वृक्ष मूल काल व बाह्य शयन काल इत्यादि कालों का लोकोत्तरीय समाचार काल में अंतर्भाव करना चाहिए, क्योंकि क्रिया काल के प्रति कोई भेद नहीं है। यानी उसमें विशिष्ट वो कुछ क्रिया जैसे आतापन योग वगैरह होता है, उसका आतापन काल बताया, वृक्ष मूल काल, यानी ये सब जो है मुनियों के जो आचार है उस संबंधी के काल बताए है, वो विशिष्ट क्रिया करते हैं उस काल में, अर्थात क्रिया काल की अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है। अब पांचवा नंबर, अद्धा काल तीन प्रकार है। हमने नाम, स्थापना, द्रव्य, उसके बाद वो समाचार काल देखा, भी अध्या काल कह रहे, अतीत, अनागत और वर्तमान। प्रमाण काल ये इतने हो गया, अध्या काल ने हम कहते अतीत काल है, अनागत है, आने वाला भविष्य काल है, वर्तमान काल है, इसी को अध्या काल कहेंगे। प्रमाण काल जिसको हम काल का वो प्रमाण बताते हैं, पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, कल्पादि के भेद से बहुत प्रकार का है। भाव काल यानी भाव निक्षेप वाली बात है, दो प्रकार का है, आगम भाव काल और नो आगम भाव काल। उनमें काल प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव काल है, और नो आगम भाव काल औदयक आदि पांच भावों स्वरूप है। वर्तमान की बात है ना, भाव काल औदयक आदि पांच भावों का उसका काल जो बताएंगे। इन कालों में प्रमाण काल प्रकृत है, काल का जो विधान है वह काल विधान है। वेदना का काल विधान वेदना काल विधान कहा जाता है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, क्योंकि संख्या, गुणकार, स्थान, जीव समुदाहार, ओज और युग्म, इन अनुयोग द्वारों का उक्त तीनों अनुयोग द्वारों में अंतर्भाव देखा जाता है। वे तीन अनुयोग द्वार कौन से है ऐसा पूछने पर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है, जो हम कल देखेंगे, क्योंकि पहले पहले उन्होंने सूत्र क्या पूछा था, कि वेदना काल विधान अनुयोग द्वार प्रारंभ होता है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, ये कौन से है वो अभी बताएंगे कल, वो हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद भाई।